देखो, नासिर ने नरमी से कहा, रिश्तों से ऐसे मुंह मोड़ने से बात नहीं बनेगी, हमें साथ रहना है। फैजान ने तुरंत उसकी बात काटी, कौन से साथ की बात कर रहे हैं आप? उसने एक एक शब्द पर जोर दिया, कौन से रिश्तों की बात कर रहे हैं आप? उसकी आंखें अब नम थीं, मगर आवाज मजबूत थी। रिश्ते जहां बिना सुने फैसला सुना दिया जाता है, या वो रिश्ते जहां अपने ही एक पल में पराए हो जाते हैं? नासिर अब पूरी तरह चुप था। फैजान ने एक गहरी सांस ली, रिश्ते नाम के नहीं होते चाचा जान, रिश्ते भरोसे के होते हैं। उसने हल्का सा सिर झुका लिया, और आज वो भरोसा टूट गया है। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर फैजान ने शांत आवाज में कहा, आपको मुझसे कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मगर रिश्तों की बात मुझसे मत कीजिएगा। ये कहकर वो मुड़ा, जैसे वो खुद भी टूट रहा हो। नासिर खान ने धीरे से फैजान के कंधे पर हाथ रखा, आवाज में गुस्सा नहीं था। मैं तुम्हारा चाचा हूं, भतीजे हो तुम मेरे। फैजान ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू तैर गए थे। नासिर ने फिर कहा, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। बस यही शब्द थे जो फैजान के दिल में कहीं बहुत गहराई तक जाकर चुप गए। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। उसे अपने अब्बा याद आ गए, उनकी आवाज, उनका हाथ सिर पर, उनका वो साया जो अब नहीं था, और आज कोई उनकी जगह लेने की बात कर रहा था। फैजान ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें दर्द साफ था। जो हो रहा है, क्या वो काफी नहीं था? कमरे में सन्नाटा छा गया। आप लोगों ने मेरे अब्बा का सब कुछ तो ले लिया, उसने नासिर की आंखों में देखते हुए कहा, अब उनकी जगह भी आपको चाहिए? ये सुनते ही नासिर खान जैसे पत्थर का हो गया। फरदीन खान, जो अब तक चुप था, एकदम से बोल पड़ा, फैजान ये क्या बोल रहे हो तुम? मगर फैजान अब रुकने वाला नहीं था, इतने सालों का दर्द आज बह रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा और नासिर की तरफ देखकर बोला, अगर आपको मेरे अब्बा की जगह चाहिए ना, उसकी आवाज अब सख्त हो गई, तो जाइए कब्रिस्तान में जाकर लेट जाइए, जहां मेरे अब्बा सो रहे हैं। ये शब्द जैसे पूरे कमरे में गूंज गए। फरदीन खान गुस्से में एकदम खड़ा हो गया, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हद होती है, संभल कर बोलो फैजान, उसकी आवाज में गुस्सा था। वो तुम्हारे बड़े हैं। फैजान ने उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस टूटन थी। फैजान ने एक आखिरी बार दोनों को देखा, मेरे अब्बा की जगह कोई नहीं ले सकता, उसने बहुत धीरे से कहा, ना आप ना कोई और। नासिर खान ने हल्के मगर ठंडे लहजे में कहा, रिलैक्स, आप चुप रहो। फिर वो आगे बढ़ा और फैजान के कंधे पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर बनावटी नरमी थी, जैसे वो हालात को संभाल रहा हो। तुम घूमने जाना चाहते हो ना, जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। फैजान कुछ बोलता उससे पहले ही फरीद खान बीच में कूद पड़ा, रेहान से कह दूंगा, 5-6 लाख दे देगा तुम्हें। उसके लहजे में एहसान झलक रहा था, जैसे वो किसी भिखारी को दान दे रहा हो। फैजान की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, मगर अगले ही पल वो सख्त हो गया। वो कोई मामूली लड़का नहीं था, उन दोनों से ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक और अब एक ऑफिसर भी बन चुका था। ताया अब्बू, उसने धीमे मगर ठोस आवाज में कहा, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे सिर्फ मेरे 3 लाख चाहिए, जो मेरे थे। उसके शब्द सीधे जाकर नासिर खान की आंखों में टकराए। नासिर खान ने एक पल के लिए नजरें हटाई, फिर वही पुराना तरीका अपनाया बात को टालने का। मैंने कहा ना, पहले घूम कर आओ, फिर बात करेंगे। असल में पैसे देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी ये मानने में कि वो पैसे फैजान के थे, और फैजान, उसे पैसे से ज्यादा जरूरत थी उस एक जुमले की, ये तुम्हारे पैसे थे, हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी रख लीजिए, फैजान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और मुड़ने लगा। मैं जा रहा हूं। नासिर खान चौंक गया, ये भी रख लीजिएगा, क्या मतलब है? फैजान रुका, धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी, एक अजीब सा सुकून और गहराई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, इसका मतलब आप दोनों मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। एक पल के लिए उसकी नजरें दोनों भाइयों पर टिकी रहीं, जैसे बिना कहे सब कुछ कह गया हो। फिर वो बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। नासिर खान और फरीद खान एक दूसरे को देखने लगे, उनकी आंखों में पहली बार बेचैनी थी। पीछे खड़ी माहिरा
जो अब तक सब कुछ सुन रही थी, उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। नासिर खान ने धीमे लेकिन परेशान लहजे में कहा, ये क्या कहकर चला गया? फरीद खान भी अब उलझ चुका था। उसने गहरी सांस ली। दोनों कुछ पल तक खामोश रहे, जैसे अपने अपने दिमाग में वही बात दोहरा रहे हों जिससे वो अब तक बचते आए थे। फिर फरीद खान ने नजरें झुका ली और धीमे से बोला, जुबेदा को इस तरह बिना सोचे समझे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। सुबह नूर कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। घड़ी की सुइयां जैसे उसे चिढ़ा रही थी, वक्त निकलता जा रहा था। अरमान अभी तक उसे लेने नहीं आया था। नूर ने एक बार, फिर दूसरी बार, फिर लगातार कई बार उसे फोन किया, लेकिन हर बार कॉल अनसुनी रह गई। आखिरकार जब उसने फोन करना बंद ही नहीं किया तो अरमान ने कॉल उठा लिया। क्या है, उसकी आवाज में साफ छुंचलाहट थी। अरमान, आप कहाँ हो? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी आ जाओ, नूर ने जल्दी जल्दी कहा। तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अरमान ने ठंडे गुस्से में जवाब दिया। नूर एक पल के लिए चुप रह गई। क्या मतलब, आप मुझे छोड़ने नहीं आओगे? अपने फैजान के साथ चली जाओ, उसके लहजे में ताना था। फैजान? नूर हैरान रह गई। सीधी सी बात है, मेरे मुकाबले में तुमने उसी की साइड ली थी ना? अरमान की आवाज अब और सख्त हो गई। नूर ने हल्का सा सांस लिया। आप अभी तक उसी बात पर नाराज हो? बच्चों जैसी बात कर रहे हो आप। बच्चों जैसी? अरमान हंसा, मगर वो हंसी गुस्से से भरी थी। रोज खुशी खुशी उसी के साथ यूनिवर्सिटी जाना और मुझे समझाओगे? अरमान, आप जो सोच रहे हो वो बहुत गलत है, नूर की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। और जो तुमने किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, अरमान ने काटते हुए कहा। नूर ने आंखें बंद की। वो उसकी बातों को उतना सीरियस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसके लिए ये रिश्ता प्यार से भरा था, शक से नहीं। अरमान प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, आज मेरा टेस्ट है, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, आप बस आ जाओ। तो फैजान से कहो, जैसे उसने तुम्हें उस दिन टाइम पर बचाया था, अरमान ने तंज कसा, फिर बिना रुके बोला। और वैसे तुम्हें छोटी सी गाड़ी में जाना तुम्हें पसंद नहीं होगा ना? अब नूर सच में आहत हो गई। आपको सच में लगता है कि मैं आपके साथ सिर्फ गाड़ी की वजह से जाती हूं? उसकी आवाज में दर्द साफ था। बस मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अरमान ने झुनवाकर कहा। नहीं, मुझे जवाब चाहिए, नूर ने पहली बार जिद की, लेकिन कॉल कट चुकी थी। नूर फोन को कुछ सेकंड तक देखती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि अभी क्या हुआ। ब्रेकफास्ट टेबल पर फरीद खान और रेहाना बेगम आमने सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे शांत थे, मगर दिमाग अपनी अपनी जाने चल रहे थे। फरीद खान ने चाय का कप रखते हुए कहा, आज तो बिना वजह के झगड़े में पूरा मूड खराब हो गया। रेहाना बेगम कुछ पल चुप रही, जैसे मन ही मन कोई प्लान बुन रही हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आप फैजान को कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं दे देते? फरीद खान ने भौहें सिकोड़ी। कैसा काम? इवेंट मैनेजमेंट, रेहाना बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। घर के फंक्शन कितनी खूबसूरती से संभालता है वो, सब कुछ कितनी परफेक्ट तरीके से करता है। असल में वो चाहती थी कि फैजान किसी काम में उलझ जाए, ताकि घर के मामलों से दूर रहे और कोई नया बखेड़ा खड़ा ना करे, फरीद खान ने थोड़ा सोचते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कारोबार में लगाना उसे? क्यों नहीं, रेहाना बेगम तुरंत बोली। फरीद खान ने सिर हिलाया।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।